नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सब पापस्स अकरणम् कुशलस्स उपसंपदा सचित्त परियोदपनम् एतम् बुद्धान शासनम्। बुराई से बचना, अच्छे कर्मों की संपदा संचित करना, पांचों निवरणों से अपने चित्त को परिशुद्ध करना, बुद्धों की यही शिक्षा है। धम्मपद गाथा 183। नैतिकता, एकाग्रता एवं अंतर्दृष्टि। बुद्ध की शिक्षाओं का संक्षिप्त सार धम्मपद की इस गाथा में प्रस्तुत है। हम इस संक्षिप्त कथन का विस्तार कर इसमें जागृति पथ अर्थात अष्टांगिक आर्य मार्ग को सम्मिलित कर सकते हैं। अष्टांगिक आर्य मार्ग तीन भागों में विभाजित है, नैतिकता या शील पाली में शील, एकाग्रता या समाधि एवं विवेक या अंतर्दृष्टि अर्थात प्रज्ञा पाली में पय्या। बुराई से बचना अर्थात बुरे कामों को करने से बचना है। नैतिक शिक्षा पदों पाली में शिक्षा पदों अर्थात शील का पालन ही नैतिकता है। अच्छा करने का अर्थ है अपने अंदर की अच्छाई को उभारना, उसे उगाना, विकसित करना तथा अपने आप को अच्छाई से भरे रखना। ऐसा करने के लिए हमें अपने मन को लाभहीन अवस्थाओं से मुक्त रखना होगा। मन लाभहीन अवस्थाओं से तभी मुक्त होता है जब ध्यान केंद्रित हो अर्थात चित्त एकाग्रता या समाधि प्राप्त हो। जब मन पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है तो वह पवित्र दशा में होता है। ऐसे समय में हम संवेदनात्मक या कामावचर स्तर से परे और अकुशल या नकारात्मक शक्तियों से मुक्त होते हैं। यह मन की ध्यान पाली में ध्यान में समावेश अर्थात समाधि की स्थिति है। चित्त को परिशुद्ध करने का अर्थ है ऐसा अभ्यास जिससे समुचित ज्ञान, समुचित समझ या समुचित दृष्टिकोण प्राप्त हो सके। यही बुद्धिमत्ता, विवेक या अंतर्दृष्टि अर्थात पय्या है। हम यहाँ नैतिक जीवन या शील द्वारा चित्त एकाग्रता या समाधि और उसके द्वारा विवेक या पय्या पर आधारित प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आए हैं। हम 10 दिनों तक यह अभ्यास करेंगे और परिणाम प्राप्त करने के लिए यह अवधि पर्याप्त है। इस प्रशिक्षण को उच्च नैतिकता में प्रशिक्षण, उच्च मानसिक विकास में प्रशिक्षण और उच्च विवेक में प्रशिक्षण, अधिशील शिक्षा, अधिचित्त शिक्षा, अधिपय्या शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। दूसरे शब्दों में हम अष्टांगिक आर्य मार्ग पर चलने का अभ्यास करने जा रहे हैं। वही मार्ग जिसे गौतम बुद्ध ने 25,000 वर्ष पहले अपने प्रथम उपदेश जिसे पाली में धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र अर्थात धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जानते हैं में निर्धारित किया था। उन्होंने यह प्रवचन उन 5 तपस्वियों को दिया जो उनके जागृति प्राप्त करने के लिए 6 वर्षों के संघर्ष में उनके साथ थे। यह अष्टांगिक आर्य मार्ग उद्देश्य प्राप्ति का माध्यम है और उद्देश्य दुख का अंत है। इस अष्टांगिक आर्य मार्ग के सार को नैतिकता, एकाग्रता और विवेक के 3 चरणों में अभिव्यक्त किया गया है। छात्र को इसी मार्ग का लगन एवं कड़ाई से पालन करना चाहिए। एक समय बुद्ध 500 भिक्षुओं के साथ देश की यात्रा कर वापस लौटे। ये भिक्षु श्रावस्ती के सभागार में बैठकर उन मार्गों की चर्चा कर रहे थे जिन पर वे चढ़कर आए थे। वे कह रहे थे अमुक अमुक गांव का रास्ता अच्छा है तथा अमुक अमुक गांव का मार्ग ऊबड़ खाबड़ है। वे कंकड़ से भरे तथा कंकड़ से मुक्त रास्तों के बारे में बात कर रहे थे। यह समझकर कि ये भिक्षु पूर्ण जागृति अर्थात अरहत्व के लिए तैयार हैं, बुद्ध उस सभागार में पहुंचे और उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। उन्होंने भिक्षुओं से पूछा कि वे क्या बात कर रहे थे, तो भिक्षुओं ने उन्हें बताया। तब बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, यह मार्ग हमारे हित के परे है। एक भिक्षु को आर्य मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का वही एक मार्ग है। और उन्होंने निम्नलिखित गाथाएं कहीं। मग्गा नठंगिको सेठो सच्चानम चतुरोपदा विरागो सेठो धम्मानम द्विपदानम च चक्षुमा। मार्गों में अष्टांगिक मार्ग, सच्चाइयों में चार आर्य सत्य, धर्मों में वीतरागता, देव मनुष्य आदि द्विपदों में चक्षुमान बुद्ध श्रेष्ठ हैं। एसेव मग्गो नत्थंयो दसनस्य विशुद्धिया एतं हितुं मे पटिपज्जथ मारस्य तं पमोहनम्। दर्शन की विशुद्धि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के लिए यही मार्ग है, कोई दूसरा नहीं। तुम इसी पर आरूढ़ हो। यह मार अर्थात मुक्ति में बाधक को हक्का बक्का करने वाला, किं कर्तव्य विमूल करने वाला है। एतम हि तुम्हें पटिपन्ना दुख संतम करिष्यथ अखातो वो मया मग्गो अय्याय सल्लकंतनम। इस मार्ग पर आरूढ़ होकर तुम दुख का अंत कर लोगे। लालसा रूपी तीर को शल्य द्वारा निकाल फेंकने का ज्ञान स्वयं प्राप्त करने के बाद मैंने इस मार्ग का तुम्हारे लिए आख्यान किया है। तुम्हें ही किच्चम आतप्पम अखातारो तथागता पटिपन्ना पमोखन्ति झाइनो मार बंधना। इस मार्ग पर चलना अर्थात तपस्या अभ्यास या परिश्रम करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तथागत तो मात्र मार्ग आख्यात अर्थात मार्गदर्शन करते हैं। इस मार्ग पर आरूढ़ होकर ध्यान करने वाले मार्ग के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। धम्मपद गाथाएं 273 से 276। इन गाथाओं के समापन पर 500 भिक्षुओं ने अरहत्व प्राप्त किया। ऐसा इसलिए नहीं कि जागृति प्राप्त करना आसान है, किंतु इसलिए कि वे पहले ही पर्याप्त साधना कर चुके थे और उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केवल थोड़े से अतिरिक्त प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। अष्टांगिक आर्य मार्ग। तो अष्टांगिक आर्य मार्ग क्या है? पहले तीन चरण नैतिक शील के हैं। एक, सम्मा वाचा या समुचित वाणी। दो, सम्मा कम्मन्तो या समुचित कर्म। तीन, सम्मा आजीवो या समुचित जीविका। उसके पश्चात अगले तीन चरण चित्त एकाग्रता या समाधि के आते हैं। चार, सम्मा वायामो या समुचित प्रयास। पांच, सम्मा सति संस्कृत में स्मृति या समुचित संज्ञान अथवा ध्यान। छह, सम्मा समाधि या समुचित समाधि, तन्मयता अथवा एकाग्रता। अंतिम दो चरण विवेक या अंतर्दृष्टि अर्थात पंया के हैं। सात, सम्मा संकल्पो या समुचित संकल्प चिंतन अथवा विचार। आठ, सम्मा दिट्ठि या समुचित दृष्टि अथवा समझ। अब आइए मार्ग के इन चरणों को और विस्तार से जांचें। नैतिकता के अंतर्गत समुचित वाणी, समुचित कर्म तथा समुचित जीविका है। समुचित वाणी का अर्थ है सत्य एवं लाभकारी वचन, न तो दूषित और न दुर्भावनापूर्ण। इसे चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक, झूठ बोलने से विरति या परहेज। दो, चुगली बदनामी तथा मिथ्या दोषारोपण से विरति। तीन, अपमानजनक, कठोर तथा दूसरों के लिए हानिकारक भाषा का प्रयोग करने से विरति। 4. व्यर्थ बातों जैसे किंवदंतियों, दंत कथा तथा बकवास या बेकार बातों से विरति। इन 10 दिनों की साधना अवधि में आर्य मौन हमें समुचित वाणी के प्रति आश्वस्त रखेगा। आप देखेंगे कि समुचित वाणी परिभाषित करते समय हमने भाषण के वे पहलू बताए हैं जिनसे हमें बचना है। यदि हम अनुचित भाषण से बचें तो शेष वाणी समुचित होगी। यदि हम आर्य मौन का पालन कर रहे हैं तो हमें इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि हमारी वाणी समुचित है या नहीं। समुचित कर्म के लिए भी हमारे पास एक परिभाषा है जो बताती है कि किन प्रकार के कार्यों से बचना है। हम हत्या करने, बिना दी हुई वस्तु ग्रहण करने तथा व्यभिचार से बचें। आइए हम हत्या से व्रत के विषय को थोड़ा और विस्तार से देखें, जिससे यह समझ सकें कि इसमें क्या क्या समाहित है। किसी सचेतन प्राणी की हत्या के अंतर्गत क्या क्या आता है? सबसे पहले तो वह एक सचेतन प्राणी होना चाहिए। यह एक सचेतन प्राणी है, इसकी जानकारी होनी चाहिए और उसकी हत्या का उद्देश्य भी। फिर इस हेतु प्रयास, जिसके अंतर्गत स्वयं कार्यवाही करना या किसी को प्रोत्साहित करना सम्मिलित है, और अंततोगत्वा प्राणी की मृत्यु। अतः हम देख सकते हैं कि मानसिक कारक या पहलू कितना महत्वपूर्ण है। यदि हमारा पैर बगीचे में अकस्मात किसी कीड़े पर गलती से पड़ जाए तो हमें इस बारे में दोषी नहीं महसूस करना चाहिए, किंतु होश में किसी की हत्या, जू या कीड़े के अंडे की हत्या से लेकर गर्भपात अथवा मानव समेत किसी भी जीवित प्राणी का वध करना अनुचित कार्य है। बिना दी हुई चीज लेने से बचने का अर्थ यह है कि चोरी के इरादे से किसी दूसरे की सजीव या निर्जीव संपत्ति को उसके स्वामी की अनुमति के बिना या तो स्वयं के शारीरिक प्रयास से या किसी और को उकसाकर हटाने या अपनाने से परहेज करना है। यौन दुराचार से बचने का अभिप्राय है ऐसे किसी भी यौन कर्म से परहेज जिससे दूसरों को पीड़ा या दुख हो। उदाहरण स्वरूप, व्यभिचार दाम्पत्य जीवनों के विघटन का कारण बनता है। इसमें बलात्कार तथा किसी पुरुष का किसी ऐसी लड़की से जो अपने माता पिता या किसी अन्य के संरक्षण में हो अनुचित यौन संबंध भी सम्मिलित है। किसी अल्प वयस्क से गलत संबंध या किसी ऐसे भी से इस प्रकार का संबंध जो पति या पत्नी ना हो अनुचित है। इस संयम में अन्य वासनाएं भी सम्मिलित हैं, अर्थात हमें मादक द्रव्यों, ताश के पत्ते या पासे से जुआ खेलने इत्यादि से बचना चाहिए। नैतिक कर्मों का तीसरा भाग समुचित आजीविका है। समुचित आजीविका का अर्थ ऐसे व्यवसाय द्वारा जीवन यापन से है जिससे किसी भी अन्य प्राणी की पीड़ा में वृद्धि न हो। इसका अर्थ है कि हम दस्युओं के व्यापार, शस्त्रों के विनिर्माण तथा मादक द्रव्यों या दवाओं के व्यापार न करें। ऐसी अनुचित आजीविका के 4 प्रकार होते हैं। एक वह जो गलत आचरण पर आधारित हो, एक वह जो अनुचित साधनों या तरीकों पर आधारित हो, एक वह जो दूसरों को धोखा देने छल कपट पर आधारित हो, और एक वह जो निम्न अथवा अयोग्य कला या पेशे पर आधारित हो। अनुचित आचरण के अंतर्गत वे सभी अनुचित कार्य एवं वाणी सम्मिलित हैं जिनकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। हमें संवेदनशील प्राणी की हत्या करने से बचना चाहिए इत्यादि। झूठ तथा अन्य प्रकार की अनुचित वाणी द्वारा अपनी आजीविका चलाने से बचना चाहिए। ऐसे 5 प्रकार के उत्पाद हैं, हथियार, प्राणी, मांस, मादक द्रव्य और विष, जिन्हें बेचने से बचना चाहिए। जब हम इस प्रकार की अनुचित आजीविका से बचते हैं तो समुचित आजीविका का पालन होता है। बौद्ध भिक्षुओं या अन्य वैरागियों जैसे भारतवर्ष और बर्मा में शिष्यों के एक वर्ग ऋषि या इसी को जिन अनुचित आजीविका का पालन नहीं करना चाहिए उन्हें अनुचित साधनों के अंतर्गत वर्णित है। निम्न अयोग्य कला या प्रथाएं विशेष रूप से भिक्षुओं पर लागू होती हैं, किंतु गृह स्वामियों पर भी लागू की जा सकती हैं। इसके अंतर्गत हस्तरेखा शास्त्र तथा शरीर के अन्य चिन्हों की व्याख्या द्वारा भविष्यवाणी, ज्योतिष और अन्य ऐसी सांसारिक कलाएं हैं जो भिक्षुओं के धर्म पालन के विपरीत हैं। बुद्ध ने भिक्षुओं को तथा गृहस्थ लोगों को सील पालन में मार्गदर्शन के लिए नियम दिए। भिक्षुओं के लिए 227 नियम हैं, किंतु हम यहाँ भिक्षु नहीं हैं और हमें यहाँ इस साधना में उन्हें जानने की आवश्यकता भी नहीं है। हम गृहस्थ लोगों को 5 या 8 शिक्षा पदों का पालन करना चाहिए। नए छात्र के लिए 5 सील पर्याप्त हैं। पुराने छात्रों को 3 अतिरिक्त शिक्षा पदों का पालन करना चाहिए। आइए अब 5 सील के बारे में देखें। 1. पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, सचेतन प्राणी की हत्या से परहेज। यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, किसी भी प्राणी के लिए उसका जीवन ही सर्वाधिक मूल्यवान है। इससे करुणा के विकास में सहायता मिलती है। 2. अदिन्नादाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, बिना दी हुई वस्तु को लेने से बचना। यह संपत्ति के लिए अनुचित इच्छाओं को रोकने में सहायक होता है। 3. कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, यौन दुराचार से परहेज। सुषुप्त अथवा जागृत काम वासना सभी के भीतर होती है। लगभग प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस पर विजय प्राप्त कर पाना कठिन होता है, इसलिए अनुचित यौन अभिव्यक्ति से बचना है। 4. मुसावादा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, झूठ बोलने से परहेज। सत्य के सार को वाणी द्वारा निभाने के लिए यह शिक्षा पद सम्मिलित किया गया है। 5. सुरामेर मज्ज पमादठाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधिया, मादक द्रव्यों से विरति। जब हम नशे में होते हैं तो मन को स्थिर रखने की एवं विचार शक्ति की क्षमता खो देते हैं। यही वे सील हैं जिनके पालन करने का बीड़ा हम सभी ने उठाया है। हमारी एक दूसरे की जान ले लेने की संभावना तो नहीं है, किंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि यदि कोई मच्छर हमें तंग कर रहा हो तो उसे मारे नहीं। हमारी आवश्यकताएं बहुत अधिक नहीं है, हमारा भोजन उपलब्ध है, अतः जो हमारा नहीं है उसे लेने से बचना आसान होना चाहिए। इन 10 दिनों तक हम किसी भी प्रकार की यौन अभिव्यक्ति से बचेंगे, अतः हमें इस बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आर्य मौन रखने के कारण हम यह जानते हैं कि हमारी वाणी अनुचित नहीं होगी और हमें मस्तिष्क को भ्रमित करने वाली कोई भी नशीली दवा या पेय के सेवन से बचना चाहिए। दूसरी तरफ ऐसी भी दवाएं हो सकती हैं जो हमारे जीवन और सुरक्षा के लिए आवश्यक हों। पुराने छात्रों को पालन करने के लिए 3 और सील हैं। 6. विकाल भोजना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, कुसमय भोजन से परहेज। 7. नच गीत वादित विसुक दर्शन माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण थाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, नाचने गाने बजाने अश्लील प्रदर्शन देखने से तथा माला इत्र विलेपन अंजन आभूषण इत्यादि शरीर को सुशोभित करने वाले पदार्थों के प्रयोग से बचना। 8. उच्चासयन महाशयना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, उच्च एवं विलासमय आसनों या शैया से परहेज। इनसे आलस्य एवं अभिमान हो सकता है। कुसमय भोजन से परहेज का अर्थ है अपराह्न में भोजन न करना। ये 8 शिक्षा पद वही हैं जिनका बौद्ध लोग एक चंद्रमास में 4 बार अर्थात चांद के 4 चरणों से संबंधित 4 दिन पालन करते हैं। इन्हें उपवासथ, पाली में उपोसथ दिवस अर्थात अनुपालन अथवा उपवास के दिन कहते हैं। इस अर्थ में कि दोपहर के बाद कोई ठोस भोजन नहीं किया जाता। बुद्ध के समय 500 गृहस्थ शिष्य ऐसे थे जो पूरे पंचशील का भी पालन नहीं कर रहे थे। वे सोचते थे कि केवल एक शिक्षा पद के पालन करने का प्रयास ही पर्याप्त था, अतः कुछ हत्या करने से बचते, अन्य झूठ बोलने से इत्यादि। कौन सा सील सबसे कठिन है, इस विषय पर एक दिन उनमें बहस छिड़ गई। यह बहुत कठिन है, मैं जिस सील का पालन कर रहा हूँ उसका पालन अत्यंत ही कठिन है। अंत में वे बुद्ध के पास गए, जिससे कि बुद्ध उन्हें सबसे कठिन शिक्षा पद के बारे में बता सके। किंतु बुद्ध ने किसी भी सील को नहीं चुना। उन्होंने कहा, किसी भी सील का पालन कठिन है, और उन्हें निम्नलिखित गाथाएं सुनाई। यो पाणमति पातेति मुसा वादंच भासति लोके अदिन्न मादियति परदारंच गच्छति सुरा मेरय पानंच यो नरो अनुयिंजति इधेव मेसो लोकस्मिम मूलम खणति अत्तनो। जो संसार में हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, परस्त्रीगमन करता है, मद्यपान अर्थात सुरा एवं मेरय का पान करता है, वह व्यक्ति यहीं इसी लोक में अपनी जड़ खोदता है। एवं भो पुरुष जाना ही पाप धम्मा असंयता मातम लोभो अधम्मो च चिरम दुखाय रंधयु। हे पुरुष, ऐसा जान कि अकुशल धर्म पर संयम करना आसान नहीं है। तुझे लोभ अर्थात राग तथा अधर्म अर्थात पाप या अकुशल धर्म चिरकाल तक दुख में न राधते अर्थात पकाते रहे। धम्मपद गाथाएं 246 से 248। अतः हमें सभी शिक्षा पदों के पालन का प्रयास करना चाहिए। यदि हम इनमें से किसी को भी तोड़ेंगे तो बाद में वही हमारे पीड़ित होने का कारण बनेगा। महाधन की कथा। हमारे लिए यह समझना कठिन है कि हम कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें मनुष्य जीवन एवं ध्यान साधना का अवसर प्राप्त हुआ है, तथा इसके माध्यम से सभी दुखों का अंत कर देने की संभावना भी। The real values of true Buddhist meditation, सच्चे बौद्ध ध्यान के वास्तविक मूल्यों में सयाजी उबाखी ने बताया है कि जागृति प्राप्त करने के लिए हमें कितनी अवधि तक परिश्रम करना होगा। अर्हत होने के लिए हमें लगभग 100 से लेकर 1000 कल्पों अर्थात विश्व चक्रों तक परिश्रम करना होगा। हम उतने लंबे समय तक काम कर सकते हैं, किंतु यदि हम मुक्ति के लिए परिश्रम करने का अवसर आने पर उसे गंवा दें तो सारे किए पर पानी फिर जाएगा। महाधन, जो बुद्ध के समय एक कोषाध्यक्ष के पुत्र थे, के साथ भी ऐसा ही हुआ। महाधन का वाराणसी के एक अत्यंत समृद्ध परिवार में जन्म हुआ था। उनके माता पिता ने निर्णय लिया कि चूंकि वे इतने धनी थे, उनका बेटा मन चाहा आनंद उठा सकता है, और अध्ययन के नाम पर उसने केवल कुछ वाद्य यंत्र बजाने ही सीखे। उसने उतने ही समृद्ध परिवार की एक कन्या से शादी की। उसकी पत्नी ने भी नाचना और गाना सीखा था, किंतु अन्य कुछ नहीं। नगर के एक युवा वर्ग ने महाधन को भ्रष्ट करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक ऐसे स्थान पर बैठकर नशीले पेय पीना और भोज करना प्रारंभ किया जहां उनका महल को जाने वाले रास्ते पर से दिखाई पड़ना सुनिश्चित था। महाधन ने अपने सेवक से पूछा कि वे क्या पी रहे थे, क्या वह अच्छा पेय था। सेवक ने उत्तर दिया, स्वामी, विश्व में इस पेय की तुलना में कोई दूसरा पेय नहीं है। तो चखने के लिए उन्होंने उसे थोड़ा सा मंगवाया, उसके बाद फिर थोड़ा और। इस तरह शीघ्र ही यह उनकी आदत बन गई। युवक उनके आसपास मटराकर उनका सारा धन भोजन पेय पुष्प एवं इत्र पर खर्च करने में उनकी मदद करते रहे। जब उनका अपना धन समाप्त हो गया तो उन्होंने अपनी पत्नी का भी सारा धन खर्च कर दिया। अपनी सारी संपत्ति बेचकर वे रंक हो गए। अंत में वे और उनकी पत्नी अन्य लोगों की रसोइयों में से बचे खुचे भोजन करने पर मजबूर हो गए। एक दिन बुद्ध ने उन्हें देखा और मुस्कुराए। ऐसा है कि जब भी कोई बुद्ध मुस्कुराते हैं तो उसका अवश्य कोई कारण होता है। अतः उनके परिचर आनंद ने उनसे पूछा कि वे क्यों मुस्कुराए थे। उन्होंने उत्तर दिया, जरा महाधन को देखो, उसने दोनों भाग्य गंवा दिया और अब वह और उसकी पत्नी भीख मांग रहे हैं। यदि उसने अपना धन नहीं गंवाया होता अपितु अपने जीवन के उत्कर्ष में स्वयं को व्यवसाय में लगाया होता तो वह प्रमुख कोषाध्यक्ष बन गया होता। यदि वह एक भिक्खु बना होता तो उसे पूर्ण जागृति या अरहत्व प्राप्त हो गया होता तथा उसकी पत्नी जागृति के तीसरे चरण अनागामी तक पहुंच जाती। यदि वह अपने जीवन के मध्य में स्वयं को व्यवसाय में लगाता तो वह द्वितीय कोषाध्यक्ष बन गया होता, या यदि वह एक भिक्खु बना होता तो उसे जागृति के तीसरे चरण अनागामी का फल प्राप्त हुआ होता तथा उसकी पत्नी जागृति के दूसरे चरण सकृतागामी पाली में सकृतागामी में स्थापित हो जाती। यदि वह अपने जीवन के तीसरे भाग में स्वयं को व्यवसाय में लगाता तो वह तृतीय कोषाध्यक्ष बन गया होता, या यदि वह एक भिक्खु बना होता तो उसे जागृति के दूसरे चरण सकदागामी का फल प्राप्त हुआ होता तथा उसकी पत्नी जागृति के पहले चरण श्रोतापन्न पाली में श्रोतापन्न में स्थापित हो जाती। और बुद्ध ने निम्नलिखित गाथाएं सुनाई। अचरित्वा ब्रह्मचर्यम् अलब्धा युवने धनम जीर्णकोंचाव झायंती खीण मच्छेव पल्लले। ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना अथवा यौवन में धन कमाए बिना लोग वृद्धावस्था में मत्स्यहीन जलाशय में बूढ़े अर्थात जीर्ण क्रौंच पक्षी के समान घुट घुट कर मरते हैं। अचरित्वा ब्रह्मचर्यम् अलब्धा यौवने धनम सेन्ति चापाति खीणाव पुराणानि अनुत्थुनम। ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना अथवा यौवन में धन कमाए बिना लोग वृद्धावस्था में धनुष से छोड़े गए बाण की भांति पुरानी बातों को याद कर अनुताप करते हुए बिलखते हुए सोते हैं। धम्मपद गाथा 155-156। बुद्ध ने महाधन के विषय में जो टिप्पणी की उससे हम देख सकते हैं कि उसने और उसकी पत्नी ने जागृति तक पहुंचने के लिए जो भी आवश्यक था वह सब कर लिया था, किंतु उन्होंने अपने अनैतिक आचरण के कारण अपना अवसर गंवा दिया। अतः हमें अपना अवसर नहीं गंवाना चाहिए और कार्यरत रहने में कोई समय नहीं खोना चाहिए। जितना ही शीघ्र हम प्रारंभ करेंगे उतना ही अच्छा हम काम कर सकेंगे और उतना ही अच्छा परिणाम होगा। बुद्ध ने पाटलिगाम के शिष्यों को बताया कि जो लोग शील का उल्लंघन करते हैं उनके लिए 5 संकट प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा जो लोग उनका पालन करते हैं उनके लिए 5 आशीर्वाद। जो 5 संकट चरित्रहीन व्यक्तियों की प्रतीक्षा करते हैं वे हैं असावधानी के कारण धन की हानि, बुरी प्रतिष्ठा, जनसमूह चाहे वह आर्यों पुजारियों गृहस्थों या तपस्वियों का हो में समृद्ध होते समय संकोच एवं कायरता तथा मृत्यु के समय विभ्रांत चित्त, मृत्यु के पश्चात शरीर के विघटन पर निम्न पीड़ा लिप्त दुख लोक अर्थात नरक में जन्म। जो 5 आशीष एक सदाचारी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं वे हैं अपने परिश्रम के माध्यम से धन की बड़ी वृद्धि, अच्छी प्रतिष्ठा, किसी जनसभा में लोगों के बीच जाते समय आत्मविश्वास, शांत मृत्यु तथा मरणोपरांत शरीर विघटन पर सुखद स्वर्गीय लोक में जन्म। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सदाचरण से समुचित चित्त एकाग्रता संभव होती है। यदि हम बुरे कर्मों की चिंता से मुक्त हैं, यदि हम मन बहलावी अर्थात ध्यान विकर्षण या ध्यान भंग करने वाली गतिविधियों में लिप्त नहीं है तो हम अपने चित्त को शांत कर सकते हैं तथा हमारा मन प्रशांति प्राप्त कर सकता है। समाधि। अब हम अष्टांगिक आर्य मार्ग के दूसरे भाग में आते हैं। इसमें समुचित प्रयास, समुचित संज्ञान अर्थात स्मृति या पाली में सती तथा चित्त एकाग्रता सम्मिलित हैं। समुचित सती प्राप्त करने के लिए हमें सही प्रयास या परिश्रम करना होगा। जब तक हम अपने चंचल एवं अस्थिर मन के विचारों की सीमा को सीमित करने का दृढ़ प्रयास नहीं करते, तब तक हम उस मानसिक सजगता की आशा नहीं कर सकते जो समुचित केंद्रण द्वारा चित्त एकाग्रता एवं समभाव की मनोदशा प्राप्त करने में सहायक होती है। जब मन पूर्ण एकाग्रता की स्थिति में होता है तो वह निवरण या विघ्न मुक्त, शुद्ध, शांत तथा बाहर और भीतर से ज्योतिर्मय होता है। ऐसी स्थिति में मन शक्तिशाली और उज्जवल हो जाता है। बाहरी तौर पर इसका निरूपण प्रकाश द्वारा होता है जो मात्र एक मानसिक प्रतिबिंब है। इस प्रकाश की मात्रा एक सितारे के प्रकाश से लेकर सूर्य के प्रकाश तक घट बढ़ सकती है। यह आलोक जो पूरे अंधेरे में मन की आंखों के सामने परिलक्षित होता है वह मन की पवित्रता, शांति और धीरता की एक अभिव्यक्ति है। इन शिविरों में साधकों को ध्यान की शक्ति विकसित कर चित्त एकाग्रता तक ले जाने के लिए उन्हें नाक के नीचे ऊपरी होंठ के एक बिंदु स्थल पर ध्यान केंद्रित करने तथा श्वास के अंदर आने और बाहर जाने के साथ साथ उसका मौन संज्ञान लेते रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चाहे हम मानते हों कि जीवन पिछले कर्मों का परिणाम है या मानसिक शक्तियों अर्थात संस्कारों पाली में संस्कारों का परिणाम है, अथवा हमारा विश्वास हो कि जीवन किसी ईश्वर से उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ है, जीवन का प्रतीक एक ही है और वह है मनुष्य में ताल, धड़कन या कंपन। वास्तव में जीवन के इस प्रतीक का एक प्रतिबिंब श्वास है। आनापान ध्यान जिसका हम अब अभ्यास कर रहे हैं, इस पद्धति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि श्वास न केवल एक स्वाभाविक शारीरिक क्रिया है, यह हमें हर समय उपलब्ध भी होती है। हम अपने श्वास के संज्ञान के माध्यम से किसी भी समय अन्य सभी विचारों का बहिष्कार कर श्वास पर अपना ध्यान टिका सकते हैं। दृढ़ प्रयास द्वारा हम अपने विचारों की सीमा को संकीर्ण करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नाक के आसपास के क्षेत्र में आती जाती प्रत्येक श्वास को जानते हुए अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। धीरे धीरे श्वास छोटी और कम होने लगती है और हमारा ध्यान ऊपरी होंठ पर एक संकुचित स्थान तक सीमित हो जाता है। हम श्वास को बाहर छोड़ते समय गर्म हवा का तथा अंदर लेते समय ठंडी हवा का अनुभव करते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि ध्यान भावना का एक साधक कुछ दिनों के प्रशिक्षण द्वारा चित्त एकाग्रता सुरक्षित करने में सक्षम न हो सके। प्रज्ञा पाली में पय्या, अष्टांगिक आर्य मार्ग का अंतिम भाग विवेक या पय्या है। विवेक या ज्ञान तीन प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। एक, दूसरों को सुनने या पढ़ने के माध्यम से। दो, चिंतन मंथन तथा विश्लेषण से। तीन, व्यक्तिगत अनुभव से। वास्तव में हम इन शिक्षाओं का स्थायी रूप से तभी पालन कर सकते हैं जब हमारा ज्ञान व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से आता है। किंतु जब हम अपनी साधना के दूसरे चरण में पहुंचेंगे तब हम विवेक के विषय में अधिक विस्तार में जाएंगे। आनापान का अभ्यास। इन पहले कुछ दिनों में हमारा उद्देश्य आनापान का अभ्यास है। जो तीन बातें हमें जाननी हैं वे हैं, एक, आश्वास अर्थात नाक में प्रवेश करती श्वास। दो, प्रश्वास अर्थात नाक से बाहर जाती श्वास। तीन, और ऊपरी होंठ पर नाक के आधार पर बिंदु स्थल। यह बिंदु स्थल ही हमारा ध्यान का केंद्र बिंदु या संदर्भ बिंदु है। श्वास लेते समय आपको पता होना चाहिए कि आप श्वास ले रहे हैं। श्वास छोड़ते समय पता होना चाहिए कि आप श्वास छोड़ रहे हैं। अपने मन को स्थिर करने के लिए कभी कभी श्वास लेते समय मन ही मन अंदर तथा श्वास छोड़ते समय मन ही मन बाहर सोचने की आवश्यकता पड़ सकती है। हो सकता है कि समय समय पर आप भ्रमित हो जाएं तथा सही टिप्पणी न कर पाएं। जब ऐसा होता है तो आप पुनः प्रारंभ करें। सतर्कता के साथ साभिप्राय श्वास लें। एक सतत दृढ़ प्रयास करें। इसके लिए इस बारे में पढ़ना, बात करना या विचार करना आवश्यक नहीं है, बस इसे करना मात्र है। पढ़ने, बात करने या सोचने का अर्थ है अपना ध्यान हटाकर समय गंवाना, और वह आपकी समाधि में बाधक होगा। यदि आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं या बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो ध्यान लगाने की कोशिश करते समय आप पाएंगे कि आपकी बातचीत और विचार फिर से वापस आ रहे हैं। अतः यदि आप प्रगति करना चाहते हैं तो केवल श्वास संज्ञान अर्थात आनापान भावना के विकास पर ध्यान केंद्रित करें। यह शिविर केवल 10 दिन का है, इसलिए इस अवधि के दौरान आपको बात करने या सोचने से बचना चाहिए। कई वर्षों पूर्व अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र यानी इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर यंगॉन बर्मा में जब सयाजी उबा खीं वहाँ आचार्य थे तो आदरणीय वेबू सयादो असीम अनुकंपा कर वहाँ आए। ऐसी मान्यता है कि आदरणीय वेबू सयादो पूर्ण शांति एवं परम आनंद के उच्चतम स्तर तक पहुँच गए थे। उन्होंने शिष्यों से पूछा कि वे सोने से क्या प्राप्त करते हैं। उत्तर था कुछ भी नहीं। तब उन्होंने पूछा तो फिर तुम सोते क्यों हो। उनके कहने का तात्पर्य था कि जो समय हम नींद में व्यतीत करते हैं यदि उसका ध्यान लगाने में उपयोग किया जाए तो वह अधिक लाभप्रद होगा। उनके अनुसार हम काफी लंबे समय तक सो चुके हैं और अब हमें उस पर बिताए समय को कम करना चाहिए। बर्मा में ऐसे कई ध्यान केंद्र हैं जहां भिक्षु अर्ध रात्रि तक ध्यान लगाते का अभ्यास करते हैं, फिर प्रातः 4 बजे उठ भी जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र यंगॉन की समय सारणी की तरह यहाँ की समय सारणी भी अत्यंत तनाव मुक्त है। अतः आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप इस समय सारणी का पालन कर रहे हैं। कई साल पहले 2 अमरीकी महिलाएं IMC अर्थात अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र यंगॉन में आईं। जब वे वहां पहुंची तो सयाजी उबा खीं ने उन्हें ध्यान के कार्यक्रम के बारे में बताया और यह भी कि उन्हें प्रातः 4 बजे जागना होगा। एक महिला ने उत्तर दिया कि वह 8 बजे के पहले नहीं जाग सकती, तो सयाजी उबा खीं ने उससे कार्यक्रम का अनुसरण करने का प्रयास करने के लिए कहा। महिला का उत्तर था कि वह इतना जल्दी नहीं उठ सकती तथा उसे लोगों के आदेशों का पालन करने की आदत नहीं थी, विशेषकर पुरुषों के। सयाजी उबा खीं ने उसे बताया कि उनका उद्देश्य वहाँ जो भी आए उसे धर्म फल प्रस्तुत करने का था और वह उस केंद्र पर जो प्रस्तुत था उसे प्राप्त करने के लिए आई थी। अतः यह उसके ऊपर था कि वह उसे ग्रहण करे या छोड़ दे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यक्रम इस प्रकार से बनाया गया था कि जिससे छात्रों को अधिकतम लाभ मिल सके, उसका अनुसरण न करने से उसी की हानि होगी। तब सयाजी उबा खीं ने एक और दृष्टांत दिया। एक बार एक वृद्ध अमरीकी महिला थी जो वहां रात में पहुंचने के पहले 20 घंटे हवाई जहाज में काट चुकी थी। वह बहुत ही थकी अनुभव कर रही थी। इसके बावजूद प्रातः 4 बजे उठकर उसने अपनी साधना प्रारंभ कर दी। आप भी दूर देशों से आकर इस अमरीकी महिला की परिस्थिति में हो सकते हैं। आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति में पारमिताओं पाली में पारमी या अतीत में किए गए अच्छे कर्मों की पर्याप्त मात्रा थी उसे अनुनय अर्थात समझाने बुझाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। समय सारणी के अनुसरण का परिणाम यह हुआ कि उसने अपने ध्यान में अच्छी प्रगति की अर्थात उसे अच्छी मात्रा में शांति और सुस्थिरता प्राप्त हुई। धर्म पाली में धम्म पीड़ा को समाप्त कर शांति और सुस्थिरता प्रदान करता है। हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां छात्रों ने इस सारणी के नियमों और विनियमों का पालन कर कुछ हद तक ऐसा प्राप्त किया है। सभी नियमों और विनियमों में सबसे महत्वपूर्ण 10 दिनों के दौरान आर्य मौन का धारण है। छात्रों में परस्पर कोई भी वार्तालाप नहीं होना चाहिए, किंतु यदि आपकी कोई आवश्यकता है तो आप प्रबंधक या आचार्य से संपर्क कर सकते हैं। आज सायं बस इतना ही। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। अब आप 7:30 बजे सायंकाल की सामूहिक साधना प्रारंभ होने तक विश्राम कर सकते हैं।